Welcome to this afternoon's session. जो हमारे भाई बहन आ रहे हैं वो सामने की तरफ आ जाए, सोफे पे बैठ सकते हैं. You can come in the front. We'll start with a very brief introduction आज के इस afternoon के session के लिए. So we're going to be with each other for 40 minutes. Next 40 minute हम आप लोगों के साथ रहेंगे और इन 40 मिनटों में हम कुछ चीजें share भी करेंगे, लेन देन भी करेंगे. So आज के प्रोग्राम का थीम है इस आफ्टरनून का कि वो इकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है. तो ब्रह्मा कुमारीज एनवायरमेंट और इकोलॉजी के फील्ड में क्या काम करते हैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहते हैं. ब्रह्मा कुमारीज का फाउंडिंग 1936-37 में हुआ, बट एनवायरमेंट के साथ काफी टाइम पहले हमने इसकी शुरुआत की. सो इट इज बीन मोर देन 30 ईयर्स नाउ कि जब हम एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करते हैं. स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट की होती जरूर है, बट उसे एक्शन पे ले आना, उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या काम किया है उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाने वाले हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सोलार एनर्जी पे जो हमारा काम है इट इज वाइडली रिकग्नाइज्ड. पूरे भारत में वी आर द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट प्राइवेट सोलार यूजर. सो सोलार एनर्जी को अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो वी स्टैंड नंबर वन. सो सोलार एनर्जी पे ये हमारा काम है, आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं. दिस इज अ सोलार पावर प्रोजेक्ट. नाउ इट इज अ 2 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट. इसमें दो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, एक तो पैराबोलिक डिशेज हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है. तो पैराबोलिक डिशेज को रिफ्लेक्ट करके सोलार एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके स्टीम जनरेशन करके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. और इसे यहीं इस कैंपस में, ज्ञान सरोवर कैंपस जहां पर आप बैठे हैं, 1993 में इसकी शुरुआत की गई एज एन एक्सपेरिमेंट. और फिर जब ये सक्सेसफुल हुआ सोलार कुकिंग में स्टीम जनरेशन के लिए, तो उसे ही धीरे धीरे दूसरे कैंपस में रेप्लीकेट किया गया. और अब ये पिछले 2 सालों से सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए नीचे शांतिवन में 80 एकड़ की जमीन पर ये बहुत बड़ा सोलार प्रोजेक्ट है. सो आप 80 एकड़ तक जहां तक देखेंगे वहां तक ये सब ऐसे सोलार पैनल्स ही दिखेंगे. दिस विल गिव यू अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये सारे सोलार पैनल्स हैं और सभी के सहयोग से ये काम हुआ. ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो विश्व भर से अनेकों लोगों ने इस प्रोजेक्ट में हाथ दिया. भारत सरकार ने भी, द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की जो न्यूक्लियर सेफ्टी और रिन्यूएबल एनर्जी के डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने भी काफी फंडिंग और रिसर्च में इस पे सहयोग दिया. तो ये पुरानी ही तस्वीरें हैं जहां पर पूरी डिशेज नहीं लगी हैं, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये एकदम शांतिवन कैंपस से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर आपको शांतिवन विजिट करने का मौका मिले तो आप जरूर इस कैंपस पे भी एक बार विजिट करें. यह हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर है जो दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी इसका रिट्रीट सेंटर कैंपस है, मानेसर के पास में. वहां पर ये सोलार फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं और पीछे कुकिंग के लिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं. तो ये सोलार एनर्जी पर हमारा बहुत बड़ा काम है. इसके साथ साथ हम एक नई प्रकार की खेती पर आजकल बात कर रहे हैं. आप में से कितने लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना है? ऑर्गेनिक चीजें, यस, वेरी वेल अवेयर है हम लोग इन चीजों के बारे में. ऑर्गेनिक में क्या होता है, क्या होता है? विदाउट केमिकल्स. उसमें दो चीजें होती हैं. एक हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज नहीं करते, और दूसरा हम कीटनाशकों का भी इस्तेमाल नहीं करते ऑर्गेनिक खेती में जब हम करते हैं. बट ब्रह्मा कुमारीज ने एक नए तरह की पद्धति का इजाद किया, और फॉर दैट मैटर हमें ये कहना चाहिए कि हमने एक पुरानी पद्धति को रिवाइव किया. इट वॉज कॉल्ड सस्टेनेबल योगिक एग्रीकल्चर. हिंदी में कहा जाए तो शाश्वत योगिक खेती. यानी भारत में ये जो फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों को इंट्रोड्यूस करवाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, उससे पहले बहुत ही कम लोग इन चीजों के बारे में जानते थे. पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, तो उस पारंपरिक तरीके से खेती के भी एक्सपेरिमेंट्स हमने किए. जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, यहाँ गुजरात में दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, कर्नाटका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है धारवाड़ में. तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करके ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जहां पर क्या वास्तविकता में सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, उसमें मेडिटेशन को खेती के लिए हेल्पफुल हो सकता है या नहीं, उसे एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं या नहीं, इस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए। और शांतिवन के पास ही तपोवन कैंपस है जो 100 एकर्स का कैंपस है, और वहां पर हम लोग योगिक एग्रीकल्चर करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो नेचुरली हम कोई कीटनाशक यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज नहीं करते। बट जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पर कीट अटैक करते हैं, खेती पर फसलों में कीड़े लगते हैं, तो उस टाइम पर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बजाय मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लग सकता होगा, बट इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन फॉर ओवर 10 ईयर्स नाउ, और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। और उससे जो फसल के लिए हानि होनी चाहिए थी उसके मुकाबले जितना पेस्टिसाइड्स डालने पर भी कुछ ना कुछ हानि होती ही है, बट उससे भी कम हानि रिकॉर्ड की गई। और नेचुरली फूड हेल्दी होता है और उसके अंदर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, और खपत जो खेत से निकलती है पानी की और इन सब चीजों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, उसकी अमाउंट भी कम होती है। द वाटर, एक खेती में अगर आप चावल उगाते हैं तो उसके लिए कितने लीटर्स पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो पानी की यूटिलाइजेशन भी कम होती जाती है। सो ऐसे जो फार्मर्स हैं वो मेडिटेशन को एज अ टूल यूज करते हैं और खेतों में जाकर मेडिटेट करते हैं और वो गुड वाइब्रेशंस को स्प्रेड करते हैं, एनर्जी के, पावर के, लव पीस के वाइब्रेशंस स्प्रेड करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में लगभग 8,000 से ज्यादा किसान इस तरीके के फार्मिंग को यूज करते हैं अभी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी एक स्टेप आगे जो भारत की पुरानी पारंपरिक कृषि की पद्धति थी, उसमें मेडिटेशन के साथ इस चीजों को इस्तेमाल किया जाता है और इसे भी लोग सीख सकते हैं। ये पूसा है दिल्ली में, अगर आप लोग जानते हैं तो एग्रीकल्चर का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर कृषि मेला हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने भी इस नई पद्धति के बारे में जानकारी ली। ये उसकी क्लिपिंग्स हैं। फिर इसके साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जानते हैं आप लोग इशू है। बहुत ठंड हो रही है ना दिन ब दिन, ठंड हो रही है दिन ब दिन, टेम्परेचर्स बहुत कम होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल कूलिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि अंदर भी वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ना, यहां गर्म हो रहे हैं तो बाहर भी गर्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो द राइजिंग टेम्परेचर्स इज अ कंसर्न। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो नजर आती है वो है ह्यूमन कंजम्पशन, कि हम चीजों को किस तरीके से यूज करते हैं। कोई भी चीज हो, फॉसिल फ्यूल हो, गाड़ी हो, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हो, एनर्जी हो, खाने पीने की चीजें हो, उसको कितना वेस्ट करते हैं, कितना सेव करते हैं, ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करता है, साल में एक कॉन्फ्रेंस इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे होती है यूएन की, जिसे हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर साल होता है। और इसके साथ साथ UNFCCC होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस के लिए ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की संघ संस्था है और इसके साथ साथ हम एनवायरमेंट के फील्ड में जो काम करते हैं उसके रिकॉग्निशन में हम एक ऑब्जर्वर पार्टी के रूप में इन कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइटेड होते हैं। सो एवरी ईयर द ब्रह्मा कुमारीज आर इनवाइटेड टू दीज कॉन्फ्रेंसेज, और 2011 से हम लोग UNCCC के ऑफिशियल ऑब्जर्वर पार्टीज हैं, हर साल हम उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस की तस्वीरें हैं। ये इंटरफेथ है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट के फील्ड में कितना काम कर सकती हैं। आप में से कितने लोग हिमालय गए हैं वो हाथ खड़े करें, हिमालय गए हो कहीं पर भी, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ओके, काफी लोग गए हैं। तो जो गंगा और यमुना का पानी है, जो हमारी दो पवित्र नदियां हैं, वो पानी कहां से आता है? हिमालय से आता है, बहुत अच्छा। तो गंगोत्री का जो ग्लेशियर है, जहां से गंगा उद्गम होती है, जहां से गंगा का मुख्य पानी आता है, ऐसा माना जा रहा है, वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट, कि 2040 तक वो ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, यानी इसके बाद गंगा जो आज 12 महीने बहती है वो 2040 के बाद 12 महीने नहीं बहेगी, सिर्फ बरसात के दिनों में बहेगी, बाकी टाइम पे सूखी रहेगी। तो एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो कोपेनहेगन में हुआ था उस पर यह चर्चा हुई थी कि अगर गंगा सूख जाएगी तो सिर्फ 6 महीने बहेगी बरसात के दिनों में, तो बाकी 6 महीने हम अपने पाप धोने के लिए कहां जाएंगे। तो फनी क्वेश्चन था, बट ये रियल कंसर्न है, क्योंकि आस्था जो जुड़ी हुई है हमारी नदियों के साथ, प्रकृति के तत्वों के साथ, अगर वो खतरे में है तो हमारी आस्था भी खतरे में है। तो इस उद्देश्य से फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया जाने लगा। बट ब्रह्मा कुमारीज तो पहले से ही पार्टिसिपेट कर रही थी, बट फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, उस पर बहुत सारे सम्मेलन हुए। ये UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस थी जो इजिप्ट में हुई थी, इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में भी हुई थी। तो हर कॉन्फ्रेंसेस में ब्रह्मा कुमारीज की टीम एक रिप्रेजेंटेशन लेकर जाती है और वहां पर काफी चर्चाएं होती हैं और बहुत सारी जगह शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आइडियाज होते हैं, जहां पर लोग उन आइडियाज को अपने पास ले जाते हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये फ्री शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये सिस्टर जयंती हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपियन डायरेक्टर हैं, ये क्लाइमेट चेंज टीवी के लिए उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन फेथ बेस्ड हैं उनके कॉन्फ्रेंस का इवेंट है, ये भी इसी एक कॉन्फ्रेंस की छोटी सी झलकियां हैं। UN कॉन्फ्रेंसेज इतने सीरियस नहीं होते जितना लोग समझते हैं, वहां पर भी बहुत क्रिएटिवली चीजों को किया जाता है। और ये वॉर्सो में कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें का एक फोटो है। और बाकी बहुत जगह हम ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, पैनल्स पर होते हैं, तो पॉजिटिविटी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है शेयर करने के लिए। और जो भी चीजें हम करते हैं, जो सोलर एनर्जी पे हम काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, ये सब कुछ फ्री शेयरिंग होता है। ब्रह्मा कुमारीज ने भले टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअली टेस्ट किया, डेवलप किया, बट ये शेयरिंग जो है वो फ्री होता है, हम किसी भी चीज को पेटेंट नहीं करते। तो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप में से कितने लोग शिरडी गए हैं? वेरी नाइस। तो शिरडी में अब शिरडी में भारत का सबसे बड़ा सोलार कुकर है, यानी सोलार बेस्ड कुकिंग जहां पे होता है वो सबसे बड़ा सोलार किचन है भारत का, और ये हाल ही में बना है 2 साल पहले, और ये शिरडी के सोलार कुकिंग सिस्टम्स का एक नजारा है। और ये जो कुकिंग सिस्टम है, यही सेम कुकिंग सिस्टम आप ज्ञान सरोवर में देख सकते हैं। तो ज्ञान सरोवर में जहां पर डाइनिंग हॉल है, जहां पर आप सभी लोग भोजन करते हैं, उसके टॉप फ्लोर पर आप जाएंगे तो ये सेम कुकिंग सिस्टम आपको दिखेगा। 1993 में ये कुकिंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए गए थे, और ब्रह्मा कुमारीज ने शिरडी में भी, जो शिरडी साई मंदिर का ट्रस्ट है, उनके लोग हमारे यहां आए, वो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और अभी जो हम ये सोलार कुकिंग से खाना बनाते हैं, लिटरली हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, क्योंकि 8 साल पहले ही हमने इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिकवर कर लिया था। तो अभी जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं वो सोलार एनर्जी से बनता है और उसमें खपत बहुत कम होती है। सो ये शिरडी का ही एक दूसरा फोटो है। अब बेस्ट लिविंग प्रैक्टिसेस, तो आप जिस कैंपस में बैठे हैं उसका नाम क्या है? सुनाई और थोड़ा लाउडली बोल सकते? ज्ञान सरोवर। तो इसका नाम ज्ञान सरोवर है। कुछ सरोवर दिखते हैं आपको यहां पे? सरोवर दिखते हैं? पानी नहीं है, पानी कम है, बट सरोवर तो है। ठीक है, तो ये जो सरोवर आप देखते हैं ये नेचुरल सरोवर नहीं है, ये मैन मेड चीजें हैं। अगर आप ज्ञान सरोवर के जिस बिल्डिंग में भी आप रुके हो ना, उसके छत के ऊपर से सारा पानी जो भी बरसात में आता है वो सब कुछ इन सरोवरों की ओर डायरेक्ट किया जाता है। सो वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहां पर है। अभी भी उसमें पानी है, हालांकि नीचे जब आप देखेंगे आबू रोड में तो पानी की बहुत दिक्कत है, यहां पर भी है खैर, क्योंकि पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी, बट उसके बावजूद भी यहां सरोवरों में थोड़ा बहुत पानी आपको देखने को मिलता है। और कोई नया पानी डाल के नहीं लेके आ रहे हैं हम, ये सिर्फ बरसात का ही पानी है जो कलेक्ट करके वहां पर रखा जाता है। और ज्ञान सरोवर में जब आप ट्रेनिंग सेंटर्स में भी कुछ वर्कशॉप्स करने गए थे आप लोग, है ना, कल गए थे आप लोग वर्कशॉप्स के लिए, तो वर्कशॉप्स करने के लिए जब आप उस बिल्डिंग में गए होंगे या ज्ञान सरोवर के बहुत सारे बिल्डिंग्स में देखा होगा कि बिल्डिंग के बीच बीच में पेड़ हैं, है, और बिल्डिंग ऊपर नीचे नीचे ऊपर चढ़ना उतरना बहुत पड़ता है। अकोमोडेशंस में भी जहां आप कमरे हैं आप लोगों के, वहां पर भी ऐसा है। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान सरोवर का जब निर्माण करवाया गया उसका निर्माण इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के किया गया कि प्रकृति को जितना कम हो सके उतनी हानि पहुंचाई जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अगर बीच में कोई बड़ा पेड़ है तो उसे काटा नहीं गया, बिल्डिंग को उसके बगल से निकाल लिया गया। तो इसलिए बहुत सारे बिल्डिंग्स के बीच में आप अभी भी पेड़ देखते हैं। और इसकी बदौलत ये होता है कि प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। तो ज्ञान सरोवर कैंपस में इतनी जो हरियाली आप देखते हैं, जो एनर्जी के नीड्स हैं, वो सब कुछ हम थोड़ा बहुत सस्टेनेबल हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं ये सिर्फ प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए नहीं है, बट अदरवाइज भी जब हम सूक्ष्म में स्पिरिचुअली उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका बहुत सारा रिटर्न भी हम लोगों को वापस मिलता है। इस कैंपस को 1996 में इस्तांबुल में टर्की में यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट समिट हुआ था, और इस कैंपस में जो रिन्यूएबल एनर्जी है और आर्किटेक्चरल के प्रैक्टिसेस हैं उसके आधार पर इसे बेस्ट लिविंग प्रैक्टिसेस अवार्ड दिया गया। तो एक बहुत ही ग्रीन कैंपस में आप लोग रहते हैं, भले आप 3-4 दिन से रह रहे होंगे बट आपको पता नहीं होगा। तो ये एक ऐसा कैंपस है जो प्रकृति और मानव के बीच के परफेक्ट सामंजस्य को दिखाने का विश्व में एक उदाहरण है। तो ये ज्ञान सरोवर कैंपस है, इसमें एक ETP प्लांट भी है जहां पर हम जो भी हमारे टॉयलेट वेस्ट वगैरह होते हैं, बाथरूम वगैरह का पानी होता है, वो सब कुछ रिसाइकल किया जाता है, जैसे गार्डनिंग में यूज किया जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। तो यहाँ कंपोस्टिंग वगैरह भी की जाती है। तो ओवरऑल चीजों को हम अपने लाइफ में जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं उसे अगर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ किया जाए तो हम अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को तो कम करेंगे ही बट संसार के लिए भी हम एक बेहतर योगदान दे सकते हैं। सो दैट वॉज लिटिल बिट अबाउट द वर्क दैट वी डू विद एनवायरमेंट। अब मैं नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिसे कराने के लिए हमारे बीच ब्रदर शांतनु हैं। ब्रदर शांतनु ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में इसी ज्ञान सरोवर कैंपस में रहते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का के दो टीवी चैनल्स हैं, एक तो पीस ऑफ माइंड टीवी है जो सैटेलाइट के थ्रू आप देख सकते हैं, और दूसरा अवेकनिंग एक नया टीवी चैनल शुरू हुआ है। तो अवेकनिंग टीवी चैनल के प्रोडक्शन के लिए शांतनु जी अपनी सेवाएं देते हैं। बाय प्रोफेशन ही इज अ फैशन डिजाइनर एंड ऑल्सो वेरी गुड एनिमेटर, तो एनिमेशन वगैरह में भी उनका काम है, बट इसके साथ साथ एनवायरमेंट के लिए उनको बहुत ज्यादा कंसर्न भी है। तो इनके परिचय में मैं सिर्फ यही कहूंगा, अ स्वीट सोल विद अ ग्रीन हार्ट। ओवर टू यू शांतनु।
ओम शांति। गुड आफ्टरनून। भोजन कैसा था? एंजॉय इट। आफ्टर इफेक्ट्स भी अच्छा भोजन का? नींद तो नहीं आ रहा? ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग आई शुड इंट्रोड्यूस श्रीनिधि भाई, बिकॉज उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया ही नहीं एंड वाजिब भी नहीं होता है, खुद से खुद की क्या तारीफ करेंगे, है ना। तो श्रीनिधि भाई इज वन ऑफ आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक वॉलंटियर हु हैज नॉट बीन जस्ट वॉलंटियरिंग इन वन फील्ड। आप गेस कर सकते हैं कितने फील्ड्स में ये सेवा देते हैं। ही इज अ आरजे, जो हमारा कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो मधुबन, उसमें ही हैज द प्राइम टाइम। सेकेंडली ही इज अ न्यूज प्रेजेंटर, जो पीस ऑफ माइंड चैनल आप बोल रहे हो उसमें जो हमारा रेगुलर न्यूज आता है जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उसके ये न्यूज प्रेजेंटर है। और ये सब इनका साइड अफेयर्स है। द मेन अफेयर विच ही इज वेरी मच डेडिकेटेड टू इज दैट ही इज इन टू ट्रेनिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन ग्लोबल हॉस्पिटल। ही इज द डेप्यूटी मैनेजर देयर एंड बिफोर कमिंग एंड हेल्पिंग ब्रह्मा कुमारीज विद ऑल दिस ही वॉज हेल्पिंग IBM इन डूइंग द सेम वर्क। So a big round of applause for Srinidhi Bhai, and thank you so much for so many of those informations. Aise the jo mujhe bhi nahi pata tha, and he says that I have a big heart for environment. Thank you so much for letting us know. बिफोर आई डू दैट एक्टिविटी विद यू ऑल आई वॉन्ट टू नो आप करना चाहेंगे, कितने लोग करना चाहते हैं? ओके लेट्स से मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका आप सबको इंडिविजुअल लेवल पे जवाब देना है, जोर से जो मेरे कान तक क्लियरली सुनाई दे और समझ में भी आए। आप सब अपना नाम बताएं। नाम नहीं पता? हाँ सब अपना अपना बताएंगे एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट। नाम? इधर वालों का नाम नहीं आया, मैं रखूं क्या? बताइए 1 2 3 नाम। अच्छा आप लोगों को समझ में आया किसी का भी नाम नहीं? ओके कहाँ से आए हैं? ऐसा हो रहा है। ओके इसको थोड़ा और स्ट्रीम डाउन करते हैं। कल आपको पता चला आप सब कौन हैं? आप सब कौन है? क्लियर वॉइस आया, एक आंसर आया। कितना क्लियर था आपको बोलने में, कितना क्लियर था मुझे समझने में, राइट? जब हम इंडिविजुअली बोल रहे थे तो कैकोफोनी था, केओस था। जब हम यूनिफाइड हो गए इन आवर विजन, सिंप्लीफाइड हो गया। आप सब कहां से आए हैं? गड़बड़ है। कहां रहते हैं आप? आप बोलेंगे बड़ौदा, वो बोलेंगे नेपाल, आप बोलेंगे भारत, वो बोलेगा मैं अमेरिका। उसके जगह पे अगर हम बोले अर्थ, आए हैं, रहते कहां पर है आप? और शरीर कहां रह रहा है? पृथ्वी पर ना। तो व्हेन वी से वेयर वी आर लिविंग टुगेदर, अगर हम बोले तो देयर इज दैट वन होम जो हम सब शेयर कर रहे हैं। इस एक ही घर पे हम सब रह रहे हैं। आपके घर में चार लोग रहते हैं, चार में से तीन उस घर को संवारने में बहुत मेहनत करते हैं और एक है जो आपके सारे की कराए मेहनत पर, मैं नहीं कहता आप कह रहे तो फिर आपको कैसा लगता है? तो ऐसा ही चल रहा है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। बिफोर वी गो अहेड विल शो यू अ लिटिल वीडियो, लेकिन सोते सोते नहीं देखना क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। ये ज्ञान सरोवर है, ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर सारा दिन पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है? तो ये भी आपकी क्लास है एंड वील बी शेयरिंग सम क्वेश्चंस एंड सम इनसाइट्स। सो काइंडली वॉच द मूवी वेरी केयरफुली एंड देन वील गेट बैक। बिफोर वी फिनिश द फिल्म, क्या समझा यहाँ तक? एनीबडी वॉन्ट टू ब्रीफ? जस्ट एनी वन. द इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. डिड आई सिविलाइजेशन? ओके. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट्स. ओके. वॉट? प्रगति कर रहे हैं बट विनाश भी हो रहा है. एब्सेंस ऑफ पीस. ओवर पॉपुलेशन. ओके. हाँ, आर्टिफिशियलिटी आ गया है. आपको क्या लगता है इस फिल्म में आगे क्या होगा? क्या होगा आगे? कोई कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई बोल रहा है गोइंग बैक टू द रूट्स. आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन से अर्थ में रहना है, गोइंग बैक वाले में या कौन से वाले में? तो आगे क्या होगा?
तो फिल्म को बीच में पॉज किया ना, तो आपको फिल्म का एंड गेस करना है. अब आगे क्या होगा?
आगे क्या होगा? Those who says that it'll all come back into good, raise your hands. स्कूल में ऐसी होता था ना वोटिंग, याद कीजिए आपके स्कूल वाले दिन.
ओके.
सुबह अच्छी क्लास कर रहे सब. वेरी गुड स्टूडेंट्स.
ज्ञान सरोवर में ज्ञान बहुत अच्छा अंदर चला गया है.
एंड दोस्त सेज कि भाई नहीं, विद दिस स्पेस इट देयर इज नो चांस टू कम बैक. प्लीज रेज योर हैंड्स.
जो कहते हैं कि सैड एंडिंग है जी, हैप्पी एंडिंग नहीं है फिल्म की.
सैड एंडिंग वाले रेज योर हैंड्स.
ओके. कुछ लोग तो हैं. इन दिस कैंपस देयर इज नो सैड एंडिंग.
एंड जिन्होंने दोनों में से किसी में हाथ नहीं उठाया, कौन सी एंडिंग है आपकी?
ये बहुत डेंजरस लोग हैं जिन्होंने दोनों नाव में पैर रखा है.
लास्ट में बोलेंगे मैंने तो वो वाले में उठाया था जो जीत गया. ओके, लेट्स सी द व्हाट्स द एंडिंग.
लेट्स गो टू द एंडिंग. यस. ओके.
कैसी थी एंडिंग? अच्छी वाली एंडिंग थी. बट क्या अच्छी वाली एंडिंग अपने आप हो जाएगी? इस फिल्म में ही बताया कि अपने आप नहीं होने वाला. कब कब चेंज होगा अच्छा वाला? जब सारे बदल जाए ऐसे भी जरूरत नहीं है. एटलीस्ट कुछ मुट्ठी भर भी अगर शुरू हो जाते हैं चेंज होना, उस ग्रुप ऑफ किड्स में से सम रियलाइज दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट एंड दे डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द रॉन्ग. वो कुछ लोगों ने डिसाइड किया, उनके करेज ने बाकियों को इंस्पायर किया और उस इंस्पिरेशन का फिर डोमिनो इफेक्ट हुआ एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड जो भी चीज नेगेटिव था वो फिर खत्म हो गया बिकॉज अंदर में हम पॉजिटिविटी से भर गए. ये फिल्म 1975 में बना था. फ्रेडरिक बर्क एक फ्रेंच एनिमेटर थे, उन्होंने 1975 में ये सारा विजन्स क्रिएट किया था. आज सो क्या बोलेंगे, पुराने लोग ज्यादा वाइज थे? एक्चुअली वाइज दोनों जगह पे थे. हम अवेयर कम है ऑफ आर विजडम, हम अवेयर कम है अबाउट द गुडनेस दैट लाइज विद इन अस, हम अवेयर कम है कि हम अकेले एक एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है. फॉर इंस्टेंस आप यहां बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आपके बगल में आके बैठा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एटमोसफेयर अच्छा है, क्लास अच्छी लग रही है, हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं. लग रहे नहीं लग रहे? कुछ नहीं बोलते.
नहीं भी लग रहे हैं तो बोलना पड़ेगा, पूछ रहे हैं तो.
भाई यहां से बोल रहे हैं ना, टीचर इज ऑलवेज राइट. तो वैसा नहीं, मैं जस्ट जोक कर रहा हूं. सब कुछ अच्छा है, जस्ट एक व्यक्ति आपके बगल में आके बैठ जाए हु स्टार्ट स्मोकिंग ऑन योर फेस, अब क्या होगा? अच्छा रहेगा सब कुछ? क्यों, कैसे सब बदल गया? सराउंडिंग बदला, बट आई लेट दैट हैपन. आई कुड हैव आस्क्ड द ब्रदर, प्लीज आप बाहर जाके स्मोक कीजिए, या फिर इफ आई वॉज अ बेटर वेल विश आई वुड हैव सेड दिस इज नॉट गुड फॉर यू, है ना. सो सिमिलरली जो स्टार्टिंग में श्री भाई ने बोला कि द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ईच इंडिविजुअल एड ऑन कर रहा है टू द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एवरी कम्युनिटी एड ऑन कर रहा है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, लाइक वाइज कंट्री एंड दैट इन दैट वे द एंटायर अर्थ. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, देर आर सो मेनी स्टैटिस्टिक्स जो कि हमको याद भी नहीं होगा, बट दो स्टैटिस्टिक्स सेज कि एट द मोमेंट राइट नाउ हम सब मिलकर के डेढ़ गुना अर्थ यूज कर रहे हैं. डेढ़ गुना मतलब अर्थ में जितनी कैपेसिटी है अपने बच्चों को खिलाने की, उससे वो तो हम ले ही रहे हैं प्लस और एक्स्ट्रा ले रहे हैं. तो दिस इज नॉट मिल्किंग द अर्थ, इट इज मोर लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ. हम अर्थ को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक रिसोर्स समझते हैं, उसको हम हमारा हितैषी या फ्रेंड नहीं समझते. हम फोन को अगर अपना केवल रिसोर्स समझेंगे तो वील यूज इट द वे वी वॉन्ट, हम बहुत कैजुअल हो जाएंगे. बट अगर हम इसको एज अ गिफ्ट समझेंगे तो गिफ्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? बहुत प्यार से. तो अर्थ को जब तक हम अर्थ अर्थ बोलेंगे या फिर हमारे पास ये संसाधन है, जब हम ये बोलेंगे तो वील बिकम वेरी मैकेनिक, सिर्फ यूज करने वाला. बट अगर वहीं पर हम इस रिलेशनशिप को, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, हमारे शास्त्रों में है, एवरी फेथ टीचेस दिस, कि हमारे अर्थ के साथ एक बहुत सेक्रेट रिलेशनशिप है. अर्थ हम सबको रिसोर्सेज दे रही है, इट इज लाइक अ मदर. तो मां के प्रति कैसा बिहेवियर होता है, क्या हमारा आज अपने इस पृथ्वी मां के प्रति वैसा बिहेवियर है? नहीं है. तो करना पड़ेगा एंड फॉर दैट लेट्स बिगिन इट फ्रॉम टुडे. एंड हाउ वी विल बिगिन इज, आप में से सबके पास नोटपैड है? कितनों के पास नोटपैड है? ओके, सबके पास नोटपैड है, पेन भी है,
पोस्टिट्स भी है
एंड पोस्टिट्स भी है. सो व्हाट वी विल डू इज, देयर इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है. यू विल फोकस ऑल योर गुड एनर्जी ऑन दिस पिक्चर, ठीक है. मैं आपको एक छोटा सा गाइडेड कमेंट्री दूंगा एंड व्हेन आई से राइट नाउ राइट योर लेटर टू मदर अर्थ, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर लेटर, ठीक है. आप शुरुआत कैसे करते हैं? जिसको आप प्यार करते हैं उनके लिए चिट्ठी लिखते हैं, तो कैसे शुरुआत करते हैं? सुनो ऐसे तो नहीं लिखते ना, पढ़ लेना, ऐसे तो नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं?
डियर,
मेरे प्यारे या डियर. सो विद अर्थ ऑल्सो विल राइट डियर. डियर
सिर्फ डियर अर्थ लिखेंगे, संबंध है ना उसका.
डियर माँ, ब्रैकेट में अर्थ लिख देना. आप अगर आपके पापा डॉक्टर तो आप ऐसे थोड़ी लिखते डियर डॉक्टर, क्या लिखते डियर डैड, ब्रैकेट में भले डॉक्टर लगा देना. तो ऐसे अर्थ बाद में, लेकिन पहले माँ. बट द कैच इज व्हेन आई से हाउ टू राइट, यू हैव टू राइट विद द हैंड दैट यू डोंट यूज फॉर राइटिंग. अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से लिखेंगे. किस किस को समझ में आ गया? किसी को रिपीट करूं मैं? सबके पास नोटपैड है, एंड यू हैव टू राइट योर लेटर टू मदर अर्थ बट विद योर नॉन राइटिंग हैंड. बट आफ्टर मेडिटेशन आप सोचेंगे कैसे लिखेंगे, मेडिटेशन करेंगे आ जाएगी एनर्जी. ठीक है? आर यू ऑल रेडी फॉर दिस चैलेंज? सुनाई नहीं दिया?
Okay. अभी भी नहीं सुनाई दे रहे हैं.
नहीं सुनाई दे रहा ना?
Yes,
मैं गारंटी कर रहा हूं मेडिटेशन के बाद आ जाएगी एनर्जी. अब एक जन ने बोला. ओके लेट्स गो. म्यूजिक सो If you don't have the notepad, you can write it on the post-it. And when you go out of the room after the session is closed, there is a beautiful picture of Mother Earth. I say beautiful because maine draw kiya hai. So you believe it, it is beautiful. Okay? So when you go there, you stick your post-its there. It's better you write it on the post-it. Theek hai? Let's bring all your focus in this moment.
Red lights.
Red lights. कुछ पल के लिए सोचें. मेरा अभी लिखना नहीं आपको, अभी सिर्फ सोचिए. ठीक है? आप चाहे तो आंखें बंद करके सोच सकते हैं या अर्थ को देखते हुए सोच सकते हैं, बिकॉज दीज फीलिंग्स आर फॉर अर्थ. ये सामने में जो मेरे बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू स्टार है, ब्लू गेंद है, ब्लू पर्ल है, इसमें मैं आप हम सब रहते हैं. सदियों से इसने हमें संभाला है, हमें जो चाहिए जब चाहिए जितना चाहिए उससे अधिक दिया है. एक मां की तरह इसने हमारा ख्याल रखा है. आज इस धरती मां के साथ मेरा भूला हुआ रिश्ता मैं याद करता हूं. सबसे पहले तो दिल से उसे धन्यवाद करता हूं. और फिर जाने अनजाने की हुए गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगता हूं. एक भोले बच्चे की तरह आज मैं अपनी धरती मां को एक प्यार भरा पैगाम लिखता हूं. इसी साइलेंस में आप अपने पोस्टिट पे लिखें वॉट एवर मैसेज, वॉट एवर लैंग्वेज यू माइट हैव, वॉट एवर वर्ड्स यू वॉन्ट टू पुट, यू आर फ्री. आपके लिखी हुई एनर्जी विल स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. अर्थ वुड कम टू नो that this is my child who feels like this for me. You may start writing.
It is just a message to earth. It is a very small thing. It could be one or two lines. आप धरती से क्या कहना चाहते हैं? If you're finished writing, एक मैसेज ये है कि आपने हमें इतना प्यार दिया है कि हम उसे भूल नहीं सकते. प्रिय धरती माँ, आपने हमें इतना प्यार दिया है कि हम उसे भूल नहीं सकते. कोई और शेयर करना चाहता है? प्यारी धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम. इतने प्यार से आप हमारा पालन करती हैं, तो आपको हमारा नमन. मेरी प्यारी धरती माँ, शुक्रिया. मैं पुनः आपको शांति, आनंद और हरियाली से भर दूंगा. सच ए ग्रेट प्रॉमिस. I love you. Very nice. Ji. Dear Mother Earth, I thank you. I promise to keep you clean and green. Dear affectionate Mother Earth, affectionate महसूस होता है? Affection महसूस होता है धरती का? ज्ञान सरोवर में तो और अच्छे से महसूस होता है. Yes. So naturally, I know so many of you are raising hands. I understand. Yes, activity को. जी. तो ये session another 10 minutes में हम समाप्त करेंगे. We'll close this. और जैसे ही हम बाहर जाएंगे, तो बाहर अर्थ का एक चित्र बना हुआ है वहां पर, और उस पर आप सभी को अपने पोस्टेट्स चिपकाने हैं, और चिपकाएंगे तो हम सभी एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ सकते हैं, उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव आवर गेस्ट विद अस हमारे इस सेशन के लिए, एंड डॉक्टर सुरेंद्र, फर्स्ट तो आई हैव टू क्वेश्चंस. पहला तो ये कि आपको ये अनुभव कैसा लगा, and second we would want to hear from you that how would you inspire people in the field of education to take something like this forward.
Bachcha jab pehli baar apne mummy ko letter likhta hai, bahut sundar aksharon mein likhta hai kya? Bahut lamba letter likhta hai kya? Aaj to bachche ne pehli shuruaat ki hai, to kaisa hoga? Kaisa hoga? ऐसे ही होगा. दिस इज अ वेरी इमोशनल आंसर. इट माइट नॉट सेटिस्फाई मेनी रैशनल थिंकिंग पीपल. द रैशनल आंसर इज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग विद योर लेफ्ट हैंड, योर राइट ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग एंड द इन्फॉर्मेशन दैट गोज इन टू योर ब्रेन इज समथिंग इज हैपनिंग. और आपने ध्यान दिया होगा, आप रोज लिखते हैं, बट अभी ये जो 5 मिनट आप लिख रहे थे, यू आर नॉट केयरिंग वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू. यू आर सो डीपली एनग्रॉस्ड इन दिस. इट वॉज लाइक अ फॉर्म ऑफ योगा, अ मेडिटेशन फॉर यू. बिकॉज आपने अपने हिडन टैलेंट्स में से एक टैलेंट को जस्ट टच किया है. सो दैट वॉज द रैशनल आंसर, बट बोथ द आंसर्स आर फाइन. यू कैन गो विद बोथ ऑफ देम टुगेदर.
डॉक्टर सुरेंद्र,
ओम शांति. इट्स माई प्रिविलेज टू बी हियर सेकेंड टाइम, बिकॉज लास्ट मंथ आई हैव बीन टू हियर फॉर स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस Even I had sent my sixth teacher to attend sports conference, and when they came back to Delhi, they are teaching students with the positive aspects of how to use the spirituality and meditation to enhance the sports performance. Now the same attitude, now I am going with the total positive aspect which I gained from this education conference. Even yesterday when we were doing workshop, and there were one fourth number question, maybe some of the participants are here, that was the question, how can I become inspiration to other? Or jahan tak 5-6 groups ki baat hai, usme se sabhi ne earth ko depict kiya tha ki how we are getting the inspiration from the earth. Mere group ne ek tree banaya tha, sun banayi thi, river banayi thi, aur usme sabne message likha tha, tree se hame milta hai selfless service, sun se hame milta hai tolerance, aur jo discipline milta hai wo milta hai hame river se. तो क्योंकि मुझे अभी बात करते करते आई गॉट एन आइडिया कि कल सभी रियलाइज कर रहे थे कि व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ, और वो टॉपिक हमने आज कवर किया है. और मुझे अच्छा लगा कुछ ने ये भी कहा कि हम इसको वापिस ऐसा ही चाहेंगे कि हरियाली हो, शांति हो, और जिस तरह से हम देखना चाहते हैं उस तरह से हमारी अर्थ हो. क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर एनहांसिंग ओवरकम चैलेंजेस. क्योंकि तीन एस्पेक्ट मुझे बड़े इंपॉर्टेंट दिखाई दिए थे इसमें, वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरकम चैलेंजेस. बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू ऑल्सो, एंड इट शुड बी ए टू वे कम्युनिकेशन. कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा. वेन आई वॉज इन जापान, आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू DOPT टू डू ए बेसिक एजुकेशन कोर्स इन जापान फॉर 2 months. वहां पर एक स्कूल का एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें चाहूंगा कि क्या दो इंपॉर्टेंट चीज में हमें सीखने के मिली. वहां पर जब मॉर्निंग आवर्स में स्कूल ओपन होता है 8 बजे शायद, क्योंकि हमारा रास्ते में वो स्कूल होता था जहां हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो हम रोज देखते थे वहां पर प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स गेट के पास 10-5 मिनट पहले खड़े होते थे और विश करते थे, जो भी स्टूडेंट आता था ग्रीट करते थे उनको, और ग्रीटिंग होता था हजिमे मिस्तु ओहियो गोजाई मास. उसका मतलब होता था कि साथ में कुछ पेरेंट्स छोड़ने आते थे, वो भी उनको देखते थे, और बच्चा एंटर करता था हजिमे मिस्ते बोलते थे बच्चे, उसका मतलब होता था हजिमे मिस्ते बोलते थे टीचर और प्रिंसिपल, क्या हाल है, कैसे हैं आप, और ओहियो गोजाई मास बोलते थे बच्चे, गुड मॉर्निंग. उसके बाद वो नाम से बुलाते थे बच्चे को, प्रिंसिपल और टीचर, और कई बार टच करते थे बच्चे को जब गेट से एंटर करता था, और बच्चा टाइमली स्कूल में जाता था, और मुझे लगता है पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे. शायद वापसी में सायोनारा एक वर्ड होता है कि बाय बाय, वो गेट पे आके उनको अगेन ग्रीट करते थे. अब नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ग्रुप मेंबर, कि उससे दो चीज की बात करना चाहता हूं, व्हाट हैबिट दे आर इनकल्केटिंग इन द चिल्ड्रंस, और दूसरा क्या स्कूल को या एडमिनिस्ट्रेशन को उससे फायदा होता था. कैन एनीवन गिव आंसर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू एजुकेशन की, बच्चों के बात करूं तो पहले इस बात पे बात करना चाहता
हूं. लव एंड अफेक्शन,
एनीवन, केयरिंग फॉर ऑल,
गिविंग इंपॉर्टेंस टू एवरीवन. बोले बोले बोले,
नहीं पहले की बात कर रहा हूं मैं अभी, प्लीज.
नहीं नहीं, ये जो एग्जाम्पल सर ने दिया उसके बारे में बात,
बच्चों में क्या इनकल्केट कर रहे हैं वैल्यूज,
रेगुलरिटी, पर्सनल अटेंशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एप्रिसिएशन, थोड़ा लाउडली बोले, रियल नर्चरिंग
टू द चिल्ड्रन,
practical example how to be humble, down to earth.
And for administrative point of view, like for principal, work culture increase ho raha hai,
respectful behavior. Commitment to the profession.
Or very good.
Parental ethics.
क्योंकि मैंने बोला था कि जब पेरेंट्स उनको छोड़ते थे, और एक चीज और मैं मिस कर रहा हूं, बाद में आप बताना, क्योंकि या तो मैं बताता हूं भी आपको, यानी जो जो चीज मैं चाह रहा था कि सारी चीज कनेक्ट हो रही है, और जहां कनेक्शन की बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने बात करी है, जो आपने से ही पता कर लगाया मुझे, कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो कनेक्शन बनता है स्टूडेंट और टीचर्स का. मैंने ये भी बोला था कि वो स्टूडेंट को नाम से बुलाता है, प्रिंसिपल और टीचर, इसमें इट मीन्स दे हैव वेरी पॉजिटिव कनेक्शन, जो एक स्कूल एजुकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई एम डीलिंग इन दिस स्कूल एजुकेशन, आई एम कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 543 स्कूल इन दिल्ली. सो बिकॉज जब ये मैं सीख के आया, तो मैंने देखा कि हम क्या लैक करते हैं, कि इवन क्लास में पूरे साल टीचर पढ़ाता है, कई बार नाम नहीं पता होता बच्चे का. हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या टीचर पढ़ा रहा होगा जिसको पूरे साल एक बच्चे का नाम नहीं पता लगा, 40-50 बच्चे की क्लास होती है. तो वहां पे मैंने देखा प्रिंसिपल इवन नोइंग द नेम ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, और वो नाम से बुलाता है, ग्रीट करता है. सबसे बड़ा तो जो आपने बताए थे पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो सब आते ही है. सेकेंड चीज मैंने जो देखी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे रेगुलर आते हैं, टाइमली आते हैं, ये हैबिट है. कोई लेट भी आता था, उसे पता है प्रिंसिपल 10 मिनट पहले, टीचर 10 मिनट पहले गेट पे होता है, वो एक हैबिट इनका रेगुलर होने की, और बिफोर टाइम आने की या ऑन टाइम आने की. जो टीचर्स जनरली वी आर फेसिंग दिस इश्यू इन अवर एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स लेट आते हैं. कुछ टीचर्स जो हमारा असेंबली टाइम होता है उसमें होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. जब ये मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम में स्टार्ट किया, तो आई नोटिस दैट कि सभी टीचर्स टाइम पे आते हैं, एक दूसरे को देख के. थर्ड, पेरेंट्स को स्कूल की जो परसेप्शन है वो चेंज हो गई, कि दिस इज द स्कूल विच आई वॉन्ट. ये परसेप्शन चेंज होना बहुत जरूरी है आज के डेट में. फिर खाली पेरेंट्स, अब क्या था, टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन हुआ, टीचर्स एंड प्रिंसिपल का कनेक्शन हुआ, साइमेंटेसली टीचर एंड पेरेंट्स का कनेक्शन हुआ, और कम्युनिटी का कनेक्शन हुआ. जो स्कूल मेरे बड़े डिस्कार्ड होते थे, जिनकी बहुत ज्यादा मतलब ये कहा जाता था कि ये स्कूल अच्छे नहीं है, विद इन 3-6 मंथ मैंने देखा कि कम्युनिटी का परसेप्शन चेंज हो गया. दिस इज द स्कूल जहां केयरिंग है टीचर्स, जहां पढ़ाते हैं टीचर्स, एक दूसरे को नाम से जानते हैं. बिकॉज हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू बी ओके. सो इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी मैं अपने स्कूल एजुकेशन में बात करता हूं, कि कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. हमें भी यहां पर ब्रह्मकुमारी में जब लास्ट टाइम आया, दिस टाइम ऑल्सो, हमें बताया गया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन. हम क्या है, हम आत्मा है. जब तक हमारा ये एस्पेक्ट क्लियर नहीं होगा, हमारे ईगो हम क्या हैं यह नहीं क्लियर होगा, और हर सिस्टम के अंदर कुछ एस्पेक्ट होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको डिफाइन करना होगा कि वो कैसे कैसे क्या क्या रोल प्ले करेंगे, और जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक साथ काम करेंगे तो हमारा एम अचीव होता है. तो कई चीजें मैंने जब सिस्टम में रहा तो मैंने नोट की. मुझे ऑलमोस्ट 23 कंट्री में जाने का मौका मिला. सेम वे मैंने इसराइल में था, तब से वहां पर सीखा कि वहां टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, जो हम लोग मिस कर रहे हैं. यहां पर हमारे यहां पर बुक के द्वारा नॉलेज दी जाती है, लेकिन लाइफ स्किल्स एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है. मैंने वहां पे देखा कि मोबाइल को वो टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज करते हैं. हम लोग यूज करते हैं किसी तरीके से कुछ वो, लेकिन मोबाइल का यूज करते हैं अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए. वो बच्चे को लेके जाते हैं एक्चुअल सिचुएशन में, वो मार्केट मॉल के अंदर लेके जाते हैं, वहां उनको दिखाते हैं जो स्वैप मशीन होती है एटीएम कार्ड की, या जो बिलिंग के लिए मशीन होती है, बच्चे को कहते हैं ये आपको कार्ड दिया, क्योंकि वहां पर कार्ड मनी है, ये वाली मनी यूज नहीं होती. कार्ड देते हैं उनको, बोलते खरीद के लेकर आओ चीज, खुद स्वैप करो, प्लस करो माइनस करो, और उसके बाद स्लिप लेकर रिसिप्ट लेकर आओ. तो लाइफ स्किल्स एजुकेशन मैंने देखा हमारे यहां पर मिसिंग है. जब इकोलॉजी की बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये, हालांकि हमारे स्कूलों में क्लब्स होते हैं, इको क्लब, आप लोग भी नोटिस करते होंगे जो स्कूल एजुकेशन में, लेकिन वो कितने एक्टिव है वो आप पे, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको एनवायरमेंट में एक्चुअल सिचुएशन में ले जाके क्या दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली आपको कैसे दिखाया जा रहा है एनवायरमेंट को. घर से निकलता है बच्चा, घर से आने तक उसको स्कूल में आता है, स्कूल के बाद घर से जाता है, और लेकिन वो रस्ते में क्या क्या चीज नोटिस करता है, पॉल्यूशन रिलेटेड, जो वे रास्ता है उसका, उसमें कौन कौन से उसको ऐसा कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है जहां इंप्रूवमेंट के चांसेस है, हाइजेनिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज नोटिस करता है। इसी को अगर जो हम बच्चे को प्रैक्टिकल सिचुएशन में ले जाके दिखाएं तो मुझे लगता है जो जिस कॉन्फ्रेंस के लिए हम आए हैं वो सार्थक होगी, हम लोग उससे सीखेंगे। मैं एक बार फिर पुनः ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद करता हूं कि जिसने इस इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू सक्सेड इन योर लाइफ देन यू हैव टू फॉलो 4 Ds, दैट इज डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। एंड इफ यू फॉलो दीज 4 Ds देन इट्स लीड टू अनदर D, दैट इज डिजायर। एंड इफ यू हैव डिजायर देन पीपल अराउंड विल एडमायर। थैंक यू।
Thank you so much. Thank you. So we come to the close of this session. इस session के बाद आप बाहर जाएंगे naturally अपने post-its लगाने के लिए। इस session के बाद भी कुछ लोगों के दिल में ऐसा होगा कि इतना सब कुछ बड़ी समस्या है, pollution है, population है, सफाई हम चाहते हैं but होती नहीं है, हम contribute तो नहीं करना चाहते global warming को but फिर भी होता है। तो इन चीजों में हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। समटाइम्स वी फील कि हम हेल्पलेस हैं, मेरे अकेले के करने से क्या होता है, अगर चलो मैं अकेला करना भी चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ये बहुत बड़ी समस्या बहुतों को फेस करना पड़ता है। यहां जाते टाइम तो मतलब बहुत सारे लोग बहुत हाई एनर्जी से जाते हैं बट वहां जाके क्या कर सकते हैं ये एक चैलेंज बन जाता है। तो इसके लिए टू क्लोज विथ हम एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। इट इज अ 2 मिनट वीडियो जो आपको ये बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। What can we do? ये अगेन हम अपने टीवी चैनल्स पे इन चीजों को यूज करते हैं और हाल ही में अर्थ डे हुआ था तो अर्थ डे पे ये वीडियो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और हमारे न्यूज चैनल पे बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया गया। होपफुली यू विल ऑल्सो लाइक इट एंड यू विल ऑल्सो यूज इट। ऑडियो प्लीज।
हमारा परिवर्तन धरती को बचा सकता है अगर सात्विक भोजन शैली अपनाएं, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, कचरे को खाद बनाएं, ऊर्जा की बचत करें, जरूरत न होने पर लाइट या अन्य उपकरणों को बंद रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ट्रेन, बस, कार शेयरिंग आदि, पानी का सतर्कता से उपयोग करें, ड्रायर के बजाय कपड़े धूप में सुखाएं, कागज का कम से कम उपयोग करें, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और हर रोज धरती के प्रति धन्यवाद के साथ शांति के प्रकंपन फैलाएं।
कर सकते हैं? सारे नहीं कर सकते तो एक तो कर सकते हैं इसमें, एक तो किया जा सकता है। एटलीस्ट वन कैन बी डन इन दिस। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक करने वाले एक उठाएं, दो करने वाले दो उठाएं, वैसे तो 10 चीजें थी इसमें, 10 वाले 10 उठाएं, दो हाथ उठा लें और 10। यस, या अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ भी नहीं होता तो हर दिन धरती के लिए धन्यवाद और शांति के वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं। यस, सो आवर एनर्जी कैन क्रिएट दैट वाइब्रेशन। सो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी को ईश्वरीय सौगात भेंट करें। ही वॉज आवर रिसोर्स फॉर दिस आफ्टरनून। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुरेंद्र भंडारिया जी, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर coming and sharing those insights with us. Samnithi, all right? Aap Kartal Dhwani se saath de sakte hain. Yes? विल क्लोज विथ अ मोमेंट ऑफ मेडिटेशन. और जैसे हमने कहा कि वी विल सेंड वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड ग्रेटिट्यूड टू द अर्थ, सो वही वाइब्रेशंस हम स्पेंड करते हैं अपने इन दो तीन मिनटों में. एंड विल ऑल्सो ट्राई टू स्प्रेड दीज वाइब्रेशंस अराउंड. कंफर्टेबली बैठे, रिलैक्स रहें. अगर आपके हाथों में कोई चीज है तो उसे खाली कर दें. I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप हूं. जहां मैं बैठा हूं वहां मैं शांति को फैलाता हूं. Wherever I am, I spread peace. इस शांति के आभा मंडल को मैं धीरे धीरे पूरे विश्व को पहुंचाता हूं. I spread these rays of peace. To the whole world. प्रकृति के सभी तत्वों में, पानी में, हवा में, आकाश में, धरती में, प्रकाश में, ऊष्मा में, समस्त जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, मैं शांति का संचार करता हूं. मैं इस धरती को धन्यवाद करता हूं. धन्यवाद ताजी हवा देने के लिए. धन्यवाद एक स्वस्थ शरीर देने के लिए. धन्यवाद मुझे हर दिन भोजन देने के लिए. धन्यवाद शुद्ध पानी देने के लिए. धन्यवाद मुझे एक शांत वातावरण देने के लिए. धन्यवाद मुझे सुरक्षा देने के लिए. मैं धन्यवाद के स्वरूप में अपनी शुभकामनाओं को, अपनी शुभ आशाओं को इस वसुधा को देता हूं.